कापालिक मत। ऐसा जान पड़ता है कि अन्य तांत्रिकों की भांति कापालिक लोग भी विश्वास करते हैं कि परम शिव ज्ञ है, उपास्य है, उनकी शक्ति और तद्युक्त अपर या सगुण शिव। इस बात को लक्ष्य करके देवी भागवत में कहा गया है कि कुंडलिनी अर्थात शक्ति शक्ति से रहित शिव भी शव के समान है। शिवो अपि शवताम याति कुंडलिन्याम विवर्जितम। और इसी भाव को ध्यान में रखकर शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा है कि शिव यदि शक्ति से युक्त हो तभी कुछ करने में समर्थ है, नहीं तो वे हिल भी नहीं सकते। शिवः शक्त पायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदैवं देवो न खलु कुशलः स्पंदित अपि। तांत्रिक लोगों का मत है कि परम शिव के न रूप है न गुण है और इसलिए उनका स्वरूप लक्षण नहीं बताया जा सकता। जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे उनसे भिन्न हैं और केवल नेति नेति अर्थात यह भी नहीं वह भी नहीं ऐसा ही कहा जा सकता है। निर्गुण शिव केवल जाने जा सकते हैं, उपासना के विषय नहीं है। शिव केवल ज्ञेय है, उपास्य तो शक्ति है। इस शक्ति के उपासना के बहाने भवभृति ने कापालिकों के मुख से शक्ति के क्रीड़न और तांडव का बड़ा शक्तिशाली वर्णन किया है। शक्तियों से वेष्टित शक्तिनाथ का महिमा का वर्णन करने के कारण यह अनुमान असंगत नहीं जान पड़ता है कि कापालिक लोग भी परम शिव को निष्क्रिय निरंजन होने के कारण केवल ज्ञान मात्र का विषय समझते हैं। वस्तुतः दसवीं सदी के आसपास लिखी हुई एक दो और पुस्तकों से भी शैव कापालिकों का जो वर्णन मिलता है वह ऊपर की बातों को पुष्ट करता है। प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक में सोम सिद्धांत नामक कापालिक का वर्णन है। कहा गया है कि वे मद्यपान करते हैं, स्त्रियों के साथ विहार करते हैं और सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नाटककार ने इनके मत को जैसा समझा था वैसा ही चित्रित किया है। इन चित्रणों को हमें उचित सतर्कता के साथ ही ग्रहण करना चाहिए। कापालिकों के संबंध में जन साधारण की जैसी धारणा थी उसी का चित्र इस नाटक में मिलता है। सर्वत्र ये कापालिक शैव समझते गए कि गए हैं। इस प्रकार पुष्प दंत विरचित महापुराण में अनेक स्थलों पर कापालिकों और कालाचार्यों का उल्लेख है। सर्वत्र उन्हें शैव योगी माना गया है और सर्वत्र उनके मद्यपान का उल्लेख है, परंतु बौद्ध कापालिक मत का कोई उल्लेख योग्य वर्णन नहीं मिलता। भवभूति के मालती माधव नामक प्रकरण से पता चलता है कि सौदामिनी नामक बौद्ध भिक्षुणी श्री पर्वत पर कापालिक साधन सीखने गई थी। मालती माधव से जान पड़ता है कि वह कापालिक साधना शैव मत की थी। श्री पर्वत उन दिनों का प्रसिद्ध तांत्रिक पीठ था। वज्र यान का उत्पत्ति स्थान भी उसे ही समझा जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों श्री पर्वत पर शैव बौद्ध और शाक्त साधनाएं पास ही पास फल फूल रही थी। बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्ष चरित में श्री पर्वत को शाक्त तंत्र का साधना पीठ बताया है। हमारे पास इस समय जालंधर पाद और कृष्ण पाद का जो भी साहित्य उपलब्ध है वह सभी वज्र यानियों की मध्यस्थता में प्राप्त हुआ है। यह तो निश्चित है ही कि परवर्ती शैव सिद्धों ने जालंधर और कानपा दोनों को अपनाया है, इसलिए यह कह सकना कठिन है कि जिस रूप में यह साहित्य हमें मिलता है वही उसका मूल रूप है या नहीं। किंतु इस उपलब्ध साहित्य से जिस मत का आभास मिलता है वह निसंदेह नाथ मार्ग को पुरावर्ती होने योग्य है। यहाँ यह बात उल्लेख योग्य है कि कानिपा संप्रदाय को अब भी पूर्ण रूप से गोरखनाथी संप्रदाय में नहीं माना जाता है। उनका प्रवर्तित कहा जाने वाला एक उप संप्रदाय वामारग अर्थात वाम मार्ग आज भी जीवित है।